शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप यूपी की धरनी से कानपुर के पास स्थित एक छोटे से गांव से निकले बाबा के बहुत ही बड़े अनमोल रत्न हैं। आपका ये सौभाग्य रहा कि बचपन से ही आपको घर में अलौकिक वातावरण मिला और जिस अलौकिक स्पिरिचुअल वातावरण में आपने स्पिरिचुअल पढ़ाई भी की और दुनिया की जो पढ़ाई होती है वो भी की, और फिर मधुबन में आए 1971 में और 72 में आकर के अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। 72 से लेकर आज 2022 तक 50 वर्षों का सफर आपने तय किया है, या यूं कहें कि अपने समर्पित जीवन की गोल्डन जुबली तक पहुंच चुके हैं आप। और इन 50 वर्षों में आपने काफी कुछ उपलब्धियां हासिल की है। जो सबसे पहली उपलब्धि है, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट जानते हैं कि भ्राता जी को किस नाम से जानते हैं सभी, हाँ, कौन से वाले राजू भाई? मुरली वाले राजू भाई, परमात्मा के जो महावाक्य चलते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं, उन मुरली का संपादन, मतलब कहने का जो पहले सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करना और फिर सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना, ये सेवा आपको मिली और आज दिन तक ये सेवा आप बखूबी निभा रहे हैं। और उसके बाद तो एक के बाद एक आपके लिए क्षेत्र खुलते गए। हमारे पास जो फोटोग्राफी है, सॉरी फोटोकॉपी है, और स्टेशनरी का डिपार्टमेंट है, वो भी आपके निर्देशन में चलता है। और चूंकि आप मुरलियों से संबंधित कारोबार देखते हैं तो मन में, दिल में सारा ही समय वो मुरलियां छपी होती है। तो मुरलियों के आधार पर आपने एक टॉक शो भी किया है अमूल्य रतन के नाम से, जिसके 1200 एपिसोड्स आपने सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। इसके साथ साथ हमारा जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं, और उस प्रभाग के द्वारा भी एक बहुत सुंदर कंसेप्ट जो विश्व को दिया गया है वो है शाश्वत यौगिक खेती। बहुत ही प्रतिभा के धनी समय समय पर पूरे भारत में भ्रमण करते हैं स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए। जो हमारे बीके भाई बहने हैं उनको पुरुषार्थ में मदद के लिए भट्टियां कराते हैं, और आज हमारे बीच में हैं, जैसे कि आप सभी मुंबई महानगरी से निकलकर एक आध्यात्मिक नगरी में आकर पहुंचे हैं, या यूं कहें कि वो विश्व जो पूर्णतः भौतिकता से भरा है, जहां पूर्णतः मटेरियलिज्म है, वहां से निकलकर एक ऐसे विश्व में आए हैं जहां पूर्णतः क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, और सेशन भी अटेंड कर रहे हैं। मैं समझती हूँ सबको अच्छा लग रहा होगा, सुकून मिल रहा होगा। तो ये आध्यात्मिकता हमें सिर्फ सुननी नहीं है, सिर्फ समझनी नहीं है, लेकिन अपने जीवन में उसे इनकॉर्पोरेट करना है, अपने लाइफ का उसे एक अंग बनाना है। तो अपनी लाइफ स्टाइल को ही हमें क्या करना है, स्पिरिचुअल बनाना है। तो कैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल को स्पिरिचुअल बनाएं, आध्यात्मिक जीवन शैली जिए, उस पर मार्गदर्शन हमें मिलेगा भ्राता जी से। सुनते हैं भ्राता जी को, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। सभी बाबा के इस आध्यात्मिक वातावरण के बीच बहुत सुखद अनुभव कर रहे होंगे। वैसे लोग समझते हैं शायद आध्यात्मिक जीवन शैली बोर करने वाली है, लेकिन जितने सुखद अनुभव आध्यात्मिक जीवन में होते हैं उतना भौतिक जगत के अंदर अल्पकाल के लिए कोई अगर सुख शांति मनोरंजन का अनुभव भी करते हैं तो सदाकाल का दुख है उसके पीछे। इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सब की आध्यात्मिक जीवन कैसे बाबा ने बनाई, हम भी उसी जीवन से आए, लेकिन जब माउंट आबू आए 1972-71 में, इस आध्यात्मिक वातावरण में आते ही ऐसे लगा ये तो एक अलौकिक दुनिया है, बिल्कुल न्यारी दुनिया है, जहाँ पर कोई भी प्रकार की जो कलयुग की निशानियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती। हम सब जानते हैं, और आप तो बॉम्बे की नगरी में अधिक रहने वाले हैं, उसको माया की नगरी कहते हैं, और उस नगरी में तो फुल भौतिकता की छाया है, और उस भौतिकता से एक आध्यात्मिक वातावरण में जब हम आते हैं तो पता चलता है कि परमात्मा ने कौन सी दुनिया रची और उस दुनिया में कितनी आंतरिक शांति है, सुख है, सकुन है, उसका अनुभव होता है, उसका आधार क्या है। जब हम आध्यात्मिक जीवन शैली कहते हैं तो आध्यात्म माना ही जिसमें स्वयं की आत्मा की पहचान है, परमात्मा की पहचान है, उनके साथ हमारे संबंध हैं, उनसे सर्व प्राप्तियां हैं, एक से ही सर्व संबंध जोड़ करके सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करना, इस देह से अपने आप को अलग एक चैतन्य शक्ति महसूस करना, क्योंकि आजकल भौतिक दुनिया में टोटल शारीरिक ही हर प्रकार की देखभाल श्रृंगार खिलाना पिलाना घुमाना सब बॉडी कॉन्शियस वाली जीवन बन गई है, और देह मन के कारण आप हम सब जानते हैं जितनी प्रॉब्लम्स बन रही हैं कलयुग के अंदर, उन सब की बीज में जड़ में है बॉडी कॉन्शियस। स्वयं को भूलने से ही धर्म भेद जाति भेद भाषा भेद रंग भेद और आपसी भेद कितने हो गए, दूरियां बढ़ गई, कहाँ तो एक अच्छी ज्वाइंट फैमिली थी, आराम से सुख चैन से एक परिवार के बीच में सब रहते थे, एक दूसरे की विशेषताओं को समझते थे, उनको इतना रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन आज हर एक की कमी कमजोरियों पर ध्यान जाता है और उसके कारण चलते चलते आपस में मन मुटाव टकराव पैदा होते हैं, दूरियां बढ़ती हैं, दो भाई भी आपस में प्यार से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते, लेन देन तो बहुत बड़ी बात है। कभी कभी एक दृश्य मैं सुनता हूँ, भारत में तो अभी इतनी नहीं है प्रथा, विदेशों में अगर कोई की माँ बीमार हो जाती है तो बच्चे से पैसा उधार लेकर के उसका इलाज करते हैं, कितनी वंडरफुल बात है। हमारी भारतीय संस्कृति में पारिवारिक जीवन में अगर कोई को थोड़ी बहुत कोई कष्ट हुई तकलीफ हुई तो उसके लिए परिवार खड़ा हो जाता है, कुछ भी है उसको सहयोग की जरूरत तो सब प्रकार की मदद करते हैं, ये थोड़ी कहते हैं हम उधार के रूप में देते हैं कर्ज के रूप में इनको देते हैं। लेकिन विदेश की संस्कृति में तो आप सब जानते हो सुनते हो कि अगर परिवार में कोई को कोई किसी को सहयोग देता है तो समझता है इस पर हमने एहसान किया है और इसका रिटर्न हमें चाहिए। तो भौतिकवादी सृष्टि में कितना देह मान के कारण अनेक प्रकार की विकृतियां आई हैं, स्वार्थ भावनाएं आई हैं, विकार उत्पन्न हुए हैं, और जब हम आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाते हैं तो मूल आध्यात्मिकता के अंदर चार बातों पर ध्यान देना। पहले मैं कौन हूं, इस पहेली को अगर हल कर लिया तो बहुत सी समस्याओं से आप पार हो जाएंगे, क्योंकि आज जितनी भी इंद्रियां हमें धोखा दे रही हैं, कोई को आंखें धोखा देती हैं, कोई को मुख धोखा दे देता है, कभी कोई कान धोखा देते, कभी हाथ दे देते, परवश स्थिति है व्यक्ति की। वो कहता है मैं चाहता थोड़ी था बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा बोलना, लेकिन निकल गया, हो गया। जब बाबा ने हम सबको ये ज्ञान दिया कि आप एक आत्मा हैं, एक मालिक हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, आपकी ही सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति है जिसको मन कहते हैं। मन को अगर आपने जीत लिया, मन को अपने अधीन कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो ये कर्मेंद्रियां तो जड़ हैं, स्थूल हैं। इसलिए जब हमें ये पाठ इस विद्यालय में पढ़ाया गया कि आप एक आत्मा हैं, मालिक हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, इन आँखों से जो देखना चाहें देखें, जो मुख से बोलना चाहें बोलें, जो खाना चाहें वो खाएं, नहीं तो नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, हम अधीन अधिकारी हैं, अधीन नहीं हैं। जब हमारा मन के ऊपर कंट्रोल आता है, मन आत्मा की जो सबसे बड़ी शक्ति है, भक्ति के अंदर सोचते हैं कि मन को दमन कर दो, मन को मार दो, मन भटके नहीं, बहुत तंग करने वाला है, परेशान करने वाला है, लेकिन बाबा ने हम सबको इसे बहुत ऊंची संज्ञा दी है कि मन जो है एक आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति पर अगर किसी ने नियंत्रण कर लिया तो दुनिया की कोई भी चीज उसके लिए असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। अगर जगत पर जीत प्राप्त करनी है तो पहले अपने आप पर, मन पर जीत प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर जो हम सब योग करते हैं, राजयोग जो बाबा ने सिखाया है, जो आप सब सीख रहे हैं, जो नए हैं वो भी सीख रहे हैं, पुराने भी उसका अभ्यास करते हैं, जितना हम राजयोग का अच्छा अभ्यास करते हैं, मन बुद्धि संस्कार ये हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, उतना आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन जाती है, मालिक बन जाती है। अपने संकल्पों को जहां और जितना समय वो रखना चाहे, ले जाना चाहे, उन संकल्पों को उसी तरह उसी दिशा में ले जा सकती है। जो हम कहते हैं मेडिटेशन के अंदर इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन, अपने घर की यात्रा करते हैं, वैसे भक्ति में इसको कहा है अंतर मन वाहन। एक दूसरा शब्द देते हैं अंतःवाहक शरीर। अंतःवाहक शरीर, अंत जो अंत है, मन जो है अंदर, वही हमारा वाहन बनता है, और उसी वाहन को अगर हम उसकी लगाम हाथ में रखते हैं, कहते हैं मन एक घोड़ा है, और घोड़े की लगाम अगर किसी के हाथ में आ गई तो काबू में रहेगा, नहीं तो बहुत परेशान करेगा। तो राजयोगी आत्माएं अपने मन की घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखती हैं, वो लगाम है परमात्म श्रीमत। श्रीमत के अनुसार क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या करना है, अगर उसके अनुसार हम चलाते हैं तो मन बहुत सदोरा है, बहुत सहयोगी है, मददगार है, नहीं तो मन भटक गया तो फिर सुख चैन बहुत दूर हो जाएगा। और आज हर व्यक्ति का मन ही तो अशांत है, कहता क्या करूं, मन नहीं मानता, बहुत बहुत चंचल है, बहुत डिस्टर्ब करता है, तनाव कहाँ हो रहा है, संकल्पों में ही होता ना, पहले हमारे अनुसार कोई काम नहीं हुआ, कोई बात बिगड़ गई, कुछ हो गया तो बस तनाव पैदा हो जाता है, मन सोचना शुरू करता है, एक के बाद एक संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं, संकल्प हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। आज सबसे बड़ी बीमारी जो है अधिक सोचने की है, बहुत सोचता व्यक्ति, सोचता रहता, ऐसे हो गया, उसके पास ब्रेक ही नहीं है। अगर आज किसी की गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या करेगा वो, एक्सीडेंट ही करेगा। आज किसी व्यक्ति के पास अपने आप को कंट्रोल करने की ब्रेक नहीं है, कहता क्या करूं, चाहता तो न चले, लेकिन एक सीरियल पूरा होता फिर उसके बाद दूसरा, वही रिपीट होने लगता है, चलता रहता है, कई बार तो नींद भी पिट जाती, पूरी रात वही चलता रहता। लेकिन अगर किसी ने अच्छा योग अभ्यास किया है, राजयोगी जीवन जी रहा है, आध्यात्मिक जीवन शैली है, उसको कंट्रोल करने के लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी विधियां बताई। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक बार मैं विदेश यात्रा पर था तो एक स्थान पर हमारे एक भाई ने, बीके ने, एक फार्म हाउस खरीदा था और उस फार्म हाउस में उसने दो घोड़े पाले थे, बहुत छोटे छोटे थे। तो जब मैंने उससे पूछा, क्योंकि जब उसके फार्म में मैं प्रवेश हुआ तो उसने उनको बहुत प्यार से बुलाया, बहुत दूर खड़े थे, आवाज दी, इंग्लिश में ही बोला और वो घोड़े वहां से भाग करके फटाफट मेरे सामने आ गए ऐसे, और आते ही ऐसे ऐसे कहा इनका वेलकम करो, तो ऐसे वेलकम करने लगे, छोटे छे। तो मैंने कहा ये वेलकम कर रहे हैं, तुम्हारी आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, वहां से भाग के आ गए हैं, कैसे आप इनका कंट्रोल किया और क्यों इनको पाला, इस पर तुम सवारी तो कर ही नहीं सकता है। तो वो बहुत बड़ा था, वो तो बेचारे छोटे छोटे थे। तो बहुत अच्छा उसने मुझे कहा कि लोग कहते हैं मन एक घोड़ा है और घोड़े को कंट्रोल करना बहुत मेहनत का काम है, तो मैं इस घोड़े को कैसे कंट्रोल करता हूं वो विधि सीखी है इससे मैंने, कंट्रोल में कितना है मेरे, एक सेकंड में देखो वहां से हमने इसको यहां बुला लिया, इसको जो कह रहा हूं वो कर रहा है, तो ये कंट्रोल में मेरे कैसे आया, उसकी विधि क्या है। तो बड़ी अच्छी बात सुनाई उसने कि मैं इसको बहुत प्यार से अपने हाथ से अच्छा दाना खिलाता हूं, उसकी मालिश करता हूं, उसको बहुत स्नेह देता हूं, और जितना मैं इसको प्यार देता हूं, स्नेह देता हूं, खिलाता हूं, पिलाता हूं, उतना वो मेरा आज्ञाकारी बन गया। आज व्यक्ति मन को कंट्रोल करना चाहता है, घोड़ा कहता है लेकिन उसको मारना चाबुक देता है, और भोजन क्या देता है वो तो आप सब देख रहे हो, साइंस की दुनिया में आप कौन सा भोजन खिला रहे हो, बैठ गए टीवी के आगे, इंटरनेट के आगे, मोबाइल के आगे, बस वही सारा दिन अशुद्ध भोजन, जिसके द्वारा ही मन की उत्पत्ति, उसके अंदर गलत गलत विचार आ रहे हैं, कोई आप हिंसात्मक कोई वीडियो देख रहे हैं जहां हिंसा हो रही है, जहां लड़ाइयां हो रही हैं, या जहां व्यभिचार हो रहा है, ऐसे कई मूवीज कई सीरियल आजकल सबके घरों में आ रहे हैं। पहले कहते थे सिनेमा में जाना पड़ेगा और आजकल सिन की मां तो हर एक के पास आ गई, हर एक के घर में आ गई, जो देखना चाहो देखो। आजकल छोटे छोटे बच्चे इतने इसके आदि बन गए हैं, कभी कभी मैं उनको देखता हूं बड़ा रहम आता है कि इनकी आंखें भी खत्म हो रही हैं, इनका गर्दन भी टेढ़ी हो रही है, इनकी पढ़ाई भी जा रही है। अभी एक छोटी बच्ची आई थी 14 साल की थी, उसके माँ बाप इतने परेशान, इतने डिस्टर्ब, कहते रात को 2-2 बजे तक ये देखती रहती है बिस्तर पर पड़े पड़े, 2 बजे 12 बजे उठती है और फिर न पढ़ाई करती है न कोई काम करती है, आलसी बन गई है। मैंने बहुत प्यार से, बड़ा बेटा ये क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या है, आदत है, ऐसी आदत बन गई जो छूट नहीं सकती। अब ये जीवन शैली है दुनिया वालों की। अब आध्यात्मिक जीवन शैली में तो आपको कहा जाता है आप 3:30-4 बजे उठो, मेडिटेशन करो, भगवान से शक्ति लो, वरदान लो, और अगर आपकी वो जीवन शैली है आप रात को 1 बजे तक 12 बजे 1 बजे तक देख रहे हो, कुछ न कुछ बातें कर रहे हो, रात को ही खाना हो रहा है, डिनर हो रहा है, लोग कहते सोने के 3 घंटा पहले कम से कम भोजन कर लेना चाहिए, नहीं तो रात की नींद खराब होती है, हार्ट पर उसका प्रेशर आता है, बीमारियां बढ़ती हैं, भोजन हजम नहीं होता है बराबर, लेकिन हमने वो जीवन शैली बना ली है दुनिया वाली, खा रहे हैं रात को 10-11 बजे तक चल रही पिकनिक हो रही है, और उसके बाद सोए तो सूर्य दर्शन शायद कोई मुश्किल से करता होगा, कितने घंटे बाद उठते हैं, फिर जीवन शैली कैसी होगी, क्या उसके अंदर होगा, कितना उस जीवन में उमंग होगा, उत्साह होगा, कोई नई क्रिएशन होगी। आज जब हम लोग उठते हैं 3-4 बजे तो सुबह 8 बजे तक हमारे कितने काम पूरे हो जाते हैं, और 8 बजे उठने वाले के सारे दिनचर्या बिगड़ गई, न स्नान टाइम पर हो रहा है, ना एक्सरसाइज हो रही है, जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है, उसका शरीर क्या हो जाएगा, उसका मन कैसा होगा। उस जीवन शैली में लोग समझते हैं बड़ा मौज है, आनंद है, लेकिन वही जीवन शैली आज इंसान के लिए बहुत खतरे की घंटी बन गई, कई प्रकार की जितनी बीमारियां पैदा हो रही उसका मूल कारण बन गई, क्योंकि उसकी दिनचर्या अपसेट हो गई, जीवन शैली बिगड़ गई। तो हम सब वर्तमान समय अगर अपने मन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को अपने अधीन करना चाहते हैं, तो उसको मारना नहीं है। इसको कंट्रोल करने की विधि, इसको अच्छा चिंतन दो, अच्छे अच्छे विचार दो, अच्छा भोजन दो, अच्छा संग दो। कहते हैं संग तारे कुसंग डुबोए। अगर आपने गलत व्यक्ति के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया, आज स्कूल में बच्चे क्यों सीख जाते हैं, माँ बाप बड़े अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति वाले भी हों, बच्चे कॉलेज में चले गए, स्कूल में चले गए, तो शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना सीख के आ जाते हैं। कहते हैं कहाँ से सीखे, संग से सीख गए। और पहले बड़े प्यार से कहेंगे अरे टेस्ट करके तो देखो, मैं खर्चा करता हूँ आप देखो तो। और फिर धीरे धीरे संग का रंग लगाते हैं, फिर उसकी जेब खाली करने लगते हैं। तो वो जीवन शैली क्या है और बाबा ने हम लोगों की क्या जीवन शैली बनाई है, वंडरफुल जीवन शैली है। मन को अच्छे विचार देते हैं, अच्छा भोजन देते हैं, सवेरे सवेरे एक घंटा बाबा के महावाक्य सुन लो, कितना मन भरपूर हो जाता। क्या बाबा उसमें हम सबको गाइड करते हैं, वरदान देते हैं, विधियां बताते हैं। अगर आज सवेरे मुरली आपने सुनी होगी, बच्चे गुणग्राही बनो, कभी किसी की खामियों को नहीं देखो, कमियां देखने से आपके अंदर वो कमियां आ जाएंगी। मियां मिट्ठू नहीं बनो, मैं बड़ा होशियार हूं, मैं ये हूं, मीठे बनो जरूर, मिठास से बात करो, मीठी धारणा को। तो ये सवेरे सवेरे अगर हमने वो चिंतन ले लिया, वो हमारी जीवन बन गई, तो उसके बाद अगर कुछ नीचे ऊपर होता भी है तो वो बात याद आती है कि सवेरे सवेरे भगवान ने मेरे कानों में क्या डाला, वो चिंतन, वो भोजन मिला, और उसके कारण हमारी जीवन इतनी श्रेष्ठ हो गई जो हम कभी भी किसी के भी पर चिंतन में, पर दर्शन में, तेरे मेरे में जाते ही नहीं है। सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। और उस भावना से जब हम रहते हैं, अगर मान लो आप एक परिवार के अंदर 5-10 सदस्य रहते हैं, अगर आप उनके साथ मिलकर के एक साथ व्यवहार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एक घर में एक चूल्हे से खाना खाना चाहते हैं, तो हरेक की विशेषता तो आपको समझनी पड़ेगी। अगर कमियां नोट करोगे तो कमियों के कारण ही झगड़े हो रहे हैं, टकराव हो रहे हैं। आपने हमारी देखी, उसने हमारी दो देख लिया, हमने एक देखी, उसने दो देखी, उसने तीन देखी, तो सारे घर में झगड़ा होने लगा। बाबा ने हम सबको कहा है, आज इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार आप देख रहे हो, आध्यात्मिक जीवन शैली है, और वो आध्यात्मिक जीवन शैली के अंदर हम सब की विशेषताएं देखते हैं। इतना स्मूथ रीति से भोजन बन रहा है, आज 20,000-25,000 का भोजन सब एक साथ खा रहे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, क्लासेज कर रहे हैं, दिनचर्या चल रही है, हर कार्य हो रहे हैं। यह आध्यात्मिकता की शक्ति है, और वह आध्यात्मिकता की शक्ति हम सबको सिखाती है, हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देख करके बाबा ने हम सबको एक बार बहुत रमणीय बात कही थी। बच्चे, आजकल की एक मजबूरी और एक फैशन है चश्मे का, चश्मा होता ना, आजकल थोड़ा कम हुआ, उस समय जब बाबा के महावाक्य चले थे तो बाबा ने कहा एक मजबूरी भी है एक फैशन भी है, बिना चश्मे को कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए लगाना पड़ता है, और एक फैशन है, दिखावा है, कलर चश्मा अलग वैरायटी प्रकार के लगाते हैं, चलते हैं। लेकिन जिस प्रकार का चश्मा होता है ना, वैसा ही सबको दिखाई देने लगता। अगर आज आप धूप में जा रहे हो और काला चश्मा लगाया है, हरा चश्मा लगाया है, तो कोई सूखी हुई चीज भी हरी हरी दिखाई देने लगती, जैसा चश्मा वैसी चीज है भले नहीं, लेकिन आपका चश्मा ऐसा है जो आपको उसमें सुखाई में, गर्मी में, धूप में भी हरियाली दिखाई दे रही है। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा, बच्चे आप सभी भी विशेषता देखने का चश्मा पहन लो। हर आत्मा के अंदर अगर 10 गलतियां कमियां भी हैं तो 1-2 विशेषताएं भी हैं, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर कुछ ना हो, कुछ तो होगा जिस कारण वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो वो जो विशेषता उसकी है, अगर आपका चश्मा ऐसा है तो उसकी कमियां नहीं दिखाई देंगी, आपको उसकी विशेषता दिखाई देंगी। और जब विशेषता देखोगे तो आप विशेष अपने आप बनते जाओगे, और उसकी गुणग्राही होने के कारण उसके साथ आपका व्यवहार मधुर रहेगा, मिलनसार रहेगा, कभी टकराव नहीं होगा। कमियां दिखाई देती, ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, नफरत पैदा होती। तो मन को जितना जिसने आत्मा को समझा है और आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके, मन और उसकी साथी है बुद्धि, क्योंकि एक विवेक संकल्प करता है ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, राइट है, रांग है, और उसी समय बुद्धि निर्णय देती है करो या न करो, हर एक के साथ है। कई बार कहते हैं लोग कि मेरे अंदर संकल्प उठा और मेरी विवेक ने कहा ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने विवेक को दबा दिया, मैंने उसको अपने अधीन कर लिया और हमने कर लिया। और करने के बाद क्या होता है, कर लिया हो गया तो क्या करते हैं, पश्चाताप। आज जितने जेल हैं, जितने कोर्ट कचहरियां आप देखते हो, अगर आप जो कैद में हैं उनसे पूछोगे तो एक दो सेकंड का, एक दो मिनट का उन्होंने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, कर लिया हो गया। एक बार मैं एक सेवा के लिए जेल में गया देखने के लिए, वहां एक बड़ा अधिकारी हमारे यहां माउंट आबू में आया था, उसने कहा कि हम अपनी जेल में एक मेडिटेशन रूम बनाए, आप आएंगे? हमने कहा जरूर आएंगे। मैं गया वहां, उसने कहा कि आपने कभी जेल तो नहीं देखी, चलो मैं आपको चक्कर लगवाता हूं। तो सबसे पहले वो मुझे बच्चों की, छोटे बच्चों की, बाल गृह सुधार उसका लिखा था, वो जेल थी, एक ही हाल इतना ही बड़ा हाल होगा, 400 बच्चे और इतने अबोध, ऐसे इनोसेंट। तो मैंने जब उनको देखा, हमने कहा भाई इनको क्यों जेल में रखा है आपने, क्या इन्होंने किया है? तो हंसने लगा, कहता है आप बैठो यहां कुर्सी पर, आप इन्हीं से पूछ लो क्या किया है। तो मैंने एक दो बच्चों को बुला करके पूछना शुरू किया, तो बस रोए रोए रोए, मैं चाहता नहीं था, मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, पश्चाताप, सब पश्चाताप, टोटल पश्चाताप। आज व्यक्ति कई बातें ऐसी कर लेता है अधीन होकर के, जो केवल पश्चाताप, नहीं बोलते तो अच्छा था, क्यों बोल दिया, क्यों हमने ऐसा कह दिया, क्यों ऐसा कर लिया। अब बोल दिया, कर लिया, हो गया, उसके बाद अगर कोई सोच रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो उसको क्या ज्ञानी कहेंगे? जो हम कहते हैं हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, ज्ञान केवल आत्मा और परमात्मा का नहीं है, ज्ञान माना समझ, समझदार। और समझ ये है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, उसके पहले एक सेकेंड लगता है। कहते हैं आपने ट्रक के पीछे एक स्लोगन पढ़ा होगा, कभी कभी जब जाते हैं तो दिखाई देता है, सोचने के पहले सोचो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। मैं कितनी बुद्धि से उसने लिखा है कि सोचने के पहले सोचो, यानी विवेक जो आपका है वो क्या कह रहा है, सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। हमारे सोचने का प्रभाव, हमारे संकल्पों का प्रभाव वातावरण क्रिएट कर रहा है, और हम सोच रहे हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इनको ऐसे करना चाहिए। हम कहते हैं हम बोला थोड़ी, हमने सोचा, लेकिन हमारे सोच का, हमारी वृत्तियों का भी एक वायुमंडल बन रहा है। बाबा ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान देकर के मन की शक्ति पर जो कंट्रोल करना सिखाया, उससे हमने अपने चिंतन धारा को परिवर्तन किया। हमारा एक बहुत अच्छा गीत बना हुआ है, अगर जीवन परिवर्तन करनी है तो चिंतन धारा को परिवर्तन कर लो, जैसा चिंतन है वैसी आपके जीवन बन जाएगी। तो मन को अच्छे संकल्प देना, अच्छे विचार देना, तो मैं जो चार बातें आपको कह रहा हूं, आध्यात्मिकता का मूल फाउंडेशन है, पहले अपने स्व की सही पहचान। जो हम इस देह को सब समझ बैठे हैं, बाबा ने कहा बच्चे तो आज है तेरी कल चली जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तुम जो एक चैतन्य शक्ति हो, अजर अमर अविनाशी शक्ति हो, जो तुम इस शरीर का, इस प्रकृति का आधार लेकर के खेल कर रही हो, तुम एक आत्मा हो, तुम अजर अमर हो, तुम आत्मा ने इस शरीर रूपी चोले को धारण किया है, ये उतारेगी, दूसरे में जाएगी, लेकिन साथ क्या ले जाएगी, जो आपने छल कपट दो झूठ चोरी से पैसा इकट्ठा किया है, संपत्ति बनाई है, दुख सुख दे करके कुछ किया है, क्या ये पाप और पुण्य की गठरी साथ जाएगी या धन संपत्ति साथ जाएगी। आध्यात्मिकता हमें कहती है जो आपने संस्कार बनाए हैं, जो पुण्य कर्म किए हैं, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे घर में आपका जन्म होगा। आधार ये बन गया कि हम आत्माएं अपने स्वस्वरूप को पहचाने और स्वधर्म में स्थित हो जाएं। हमारा स्वधर्म जो है, आत्मा का जो निज धर्म है, उसकी स्मृति रहनी चाहिए। न मैं हिंदू हूं, न मैं मुस्लिम हूं, न मैं सिख हूं, न ईसाई हूं, ये जो धर्म है तो आज दैहिक धर्म बन गए, दैहिक जातियों में हम बट गए। आध्यात्मिक जीवन शैली हमें बताती है हम आत्मा एक पिता के घर से आए हैं, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, और हम सब का स्वधर्म शांति प्रेम पवित्रता है। उस स्वधर्म में हम स्थित रहे कि ये मेरा निजी धर्म है, बाकी देह का धर्म आज हमने यहां जन्म लिया तो हम ये कहला रहे हैं, ये शरीर छोड़ के दूसरे घर में जाएंगे तो वो कहलाने लगेंगे। जाति भी बदल सकती है, धर्म भी बदल सकता है, लेकिन आत्मा तो वही है। तो बाबा ने हमें आत्मा की पहचान दी, स्वधर्म की पहचान दी, स्वस्वरूप की पहचान दी और स्वदेश की पहचान दी। क्योंकि आज जो हमने अपना कह करके मेरा 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 घर बसा लिए हैं, फंस गए हैं, बाबा कहते बच्चे तेरा नहीं है, तूने तो पार्ट बजाने के लिए परिवार लिया, शरीर लिया पहले, फिर संबंध बनाए, फिर घर बार दुकान घर बनाया, लेकिन यह सब विनाशी है, थोड़े समय का है। आपके आपके पार्ट बजाने का ये पार्ट स्थान है, आपका ये निज नहीं है। जिसको आप निज समझ रहे हो उसके कारण आप बंधन में बंधे हो, उसके कारण दुख है। एक कहानी छोटी से सुनाता हूं। कहते हैं एक व्यक्ति था, उसका बहुत अटैचमेंट था किसी परिवार के साथ कि मेरे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे होंगे, उनके पोतरे होंगे, उनके ये होंगे, जनरेशंस बढ़ेगी, तो मैं इनके लिए कुछ अच्छा सा भवन बना दूं। और बहुत खुद बेचारा एक छोटे से कुटिया में रह करके, एक छोटे से स्थान पर रह करके बड़ी मेहनत से दिन रात झूठ छल करके कमाई किया, और कमाई करके जो कुछ आया उसके आधार से वो बिल्डिंग बनाना शुरू किया। और बहुत अच्छी 5-6 मंजिला मकान उसने खड़ा किया, और रोज चक्कर लगाने जाता था, ये मेरे फलाने बेटे के लिए है, फिर उसके बेटे आएंगे उसके लिए है, उसकी बहू के लिए है, पोतरे के लिए है, रोज देखता था, खुश होता था। अचानक कुछ दिन के बाद कमाई करके जब पूरा हुआ, बन गई बिल्डिंग, कुछ ऐसे शॉर्ट सर्किट हुई जो उसमें आग लग गई। और जब आग लगी और बिल्डिंग जलने लगी तो बच्चों को, छोटे पड़ोसियों को पता था कि बाबूजी इसको देख के रोज खुश होते हैं, रोज नशा चढ़ाते हैं, आज इनका क्या हाल होगा। दौड़े दौड़े गए, बाबूजी बाबूजी आपकी वो बिल्डिंग तो जल रही है, बिल्डिंग जल रही है, मेरे खून पसीने की कमाई ऐसे मेरी आंखों के आगे खत्म हो रही। बस उनका बीपी बढ़ा और फटकने लगे, तड़पने लगे। बच्चा एक बड़ा समझदार था, दौड़ के आया, बाबूजी क्या हुआ क्या हुआ। अरे क्या बच्चा, मैंने जिंदगी भर जिन बच्चों के लिए इतनी मेहनत किया, इतना पाप कर्म करके पैसा कमाया, आज मेरी कमाई देखो तो मेरी आंखों के सामने, अब मुझे नहीं जीना, अब मैं जी के क्या करूंगा। बस तड़फ रहा था, तड़फ रहा था। बच्चा समझदार था, पढ़ा लिखा था, बाबूजी एक बात बताना मैं भूल गया, कुछ दिन पहले मैंने इसका सौदा कर दिया था। मैंने क्या करेंगे, आपको बताया नहीं, ये तो मैंने बेच दी थी, मेरे हाथ में देखो इसके लिए चेक है, एक कागज का टुकड़ा चेक दिखा दिया, काहे तो बेच दिया, मेरी नहीं है। बस उसके विचार एकदम चेंज हो गए, मेरी नहीं है जलने दो, उसका उसी समय पारा नॉर्मल हो गया, मेरी नहीं है बस। तो आज हमने जो दुख के कारण बनाए क्या है, भौतिक जगत में हम समझते हैं सब मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन अगर हमारे आंखों के सामने जाने लगेगा तो हाल मेरा क्या होगा। इसलिए समर्पित करो, बाबा को बोलो बाबा सब तेरा है तेरा है तेरा है, तूने दिया है तेरा है, अच्छे काम में लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो कुछ भी हो जाए। अगर ये भावना हमारी पैदा हो जाए कि ये सब प्रभु देन है, हम तो यहाँ नाटक करने के लिए आए हैं, पार्ट बजाने के लिए आए हैं, थोड़े समय के लिए साथी संबंधी धन दौलत मिली है, ये तो सब जाने वाली है, ये हम साथ लेकर तो जाने वाले नहीं। अगर हमने इससे पुण्य किया है, सुख दिया है, दान पुण्य किया है, तो पुण्य की पूंजी जरूर साथ जाएगी। तो परमात्मा ने हम सबको कितना इस सृष्टि में रहते हुए न्यारा प्यारा उपराम बना दिया, कहीं कभी कोई दुख होता ही नहीं है। हम सबके लिए तो इस विद्यालय के जितने विद्यार्थी हो सब कह रहे हैं कि हम तो इस दुख धाम का किनारा छोड़ चले। कितने भी दुख बढ़े, कितनी भी महंगाई बढ़े, कितने भी तनावपूर्ण वातावरण में हम जिए, लेकिन हमें वो दुख की लहर नहीं आ सकती। जिनको ऐसा निश्चय है, बाबा के जो पक्के बच्चे हाथ उठाओ, ऐसे निश्चिंत जीवन जिन्होंने बनाई है ना, अभी जिन्होंने नहीं बनाई है बना लेना, देखना कि इस चिंता वाली दुनिया में देखो तीन चीजें कितनी भयानक रीति से बढ़ रही है, तीव्रता से बढ़ रही। एक तरफ एकदम तनाव, चिंता, चिंता की चिता पर व्यक्ति बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ अभी 2 साल में कोविड में आप लोगों ने देखा होगा भय, इतना भयभीत हो गया व्यक्ति, पता नहीं इसके साथ टच हो जाऊंगा तो मैं ही न मर जाऊं ये मेरे पास आ गया खांस रहा है, अरे कोई खांस रहा है, कोई छींक दिया तो उससे किनारा हो गया भाई, कहीं कुछ हो न जाए भयभीत हो गया व्यक्ति, और मौत से ही डर। बाबा ने हम सबको निर्भय बना दिया, भय रहित हम रहे हैं, हम भी तो इसी संसार में हैं, लेकिन बाबा के बच्चे एकदम निर्भय, संभाल करो, ऐसा नहीं कहा जाता संभाल नहीं करो, भाई मास्क कहा गया भले लगाओ, जहां जरूरी जो परहेज बताई गई करो, लेकिन भय से मर जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और कई लोग जो घर में थे, अगर कुछ सर्दी जुकाम हुआ तो अपने घर में काढ़ाड़ा पी करके अपने को ठीक कर लिया, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल चले गए तो मैंने देखा वो हॉस्पिटल से वापस नहीं आए, बहुत सारे भयभीत भय के कारण, क्योंकि वो लेटा हुआ है और देख रहा है इधर वाला चला गया इधर वाला चला गया, अब मेरा क्या होगा, मैं भी जाता है। यही हुआ है ना अधिकतर, जहां तक हमने समाचार सुने हैं, जो हॉस्पिटल्स में चले गए वो भय के कारण मर गए, उनको किसी से मिलने नहीं दे रहे, अपने संबंधी भी नहीं मिल सकते, नजदीक वाले भी नहीं मिल सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वहीं का खाओ बेचारे क्या खाएंगे, इधर मुर्दा पड़ा इधर मुर्दा पड़ा क्या खाएंगे। 14 दिन तक उनके लिए वो जेल से ज्यादा दुख की सीन थी, और वो भय के कारण कई आत्माएं शरीर छोड़ गई। बाबा के बच्चे अगर कुछ हुआ भी थोड़ा बहुत, अपनी दवाई किया, अपना ठीक किया, और निर्भय स्थिति में रहे, कुछ भी हो जाए हम तो अपनी पुण्य की पूंजी साथ लेके जाएंगे। तो ये चिंता, भय और तीसरा दुख, दुख के पहाड़ गिर रहे हैं। बाबा उस समय कहते थे 50 साल पहले, बच्चे ऐसा समय आएगा जो दुख के पहाड़ गिरेंगे, और आज इस सीजन में, इस 2 साल के अंदर, कोविड के अंदर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है दुख के पहाड़ गिरे हैं लोगों पर न चाहते हुए। मैं आपके एक घटना सुनाता हूं। मैं हरियाणा गया था 3-4 मास पहले, एक बहुत अच्छा प्रोफेसर हमारे प्रोग्राम को गाइड कर रहा था, सबको हंसा भी रहा था, बहुत खुशनुमा लग रहा था, बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहा था पूरे प्रोग्राम को, करीब 300-400 लोग इकट्ठे हुए थे। जब पूरा हो गया प्रोग्राम तो वो मेरे से पर्सनल मिलने आया, कहता भाई साहब मैं ज्ञान में चलता हूं, मेरे ऊपर बाबा कहते थे बच्चे दुख के पहाड़ गिरेंगे, एक पहाड़ गिरा है, मेरी युगल भी डिप्रेशन में है, आप थोड़ा उनसे मिलेंगे। हमने क्या हुआ, क्या पहाड़ क्या गिरा, मैं तो जानू ना क्या पहाड़ गिरा। कहता मेरे 2 बेटे, मैंने बहुत अच्छी इनको स्टडी कराई, एक बहुत बड़ा ऑफिसर बना, पुलिस का अधिकारी बन गया, और दूसरा इंजीनियरिंग पढ़ करके पास किया था। वो मेरे से बहुत आग्रह किया मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, आजकल बच्चों को बस उड़ने वाली गाड़ियां चाहिए। तो कहते बहुत जिद किया, बच्चे को मैंने समझाया भी, 4-व्हीलर है सब कुछ है, क्या करेगा मोटरसाइकिल, नहीं मुझे तो चाहिए, और ले आया, मोटरसाइकिल देनी पड़ी। और जब कोविड का फुल टाइम था, वो मोटरसाइकिल से निकला और एक कहां से उसको क्या नशा था, डिवाइडर पर चढ़ गया और पलटा, बहुत चोट आई, मरा नहीं चोट बहुत आई, तो लोग उठा करके ले गए हॉस्पिटल में। लेकिन हॉस्पिटल में जब उसका भाई ले गया, जो पुलिस का अधिकारी था वो ले गया, एडमिशन तो मिल गई, नहीं तो एडमिशन ही नहीं दे रहे थे, नहीं कोविड के सिवाय कोई को नहीं लेंगे, ले तो लिया। लेकिन जब चेक किया तो जो भाई उठा के उसको ले गया था उसको पॉजिटिव निकला, जिसको चोट लगी थी वो नेगेटिव, अब वो कुछ नहीं था उसको, बिल्कुल एकदम अट्टा कट्टा जवान लड़का, और उसको भर्ती कर दिया। डॉक्टर ने कहा ये नहीं मिल सकता किसी से, बड़ा भाई, और सचमुच वो पॉजिटिव था और हॉस्पिटल में मर गया, शरीर छोड़ दिया। अब छोटा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसका सारा हाथ पैर ये वो सब टेढ़ा, मुंह टेढ़ा लेके आया मेरे सामने मिलाने के लिए, बोल भी नहीं पाता था, ठीक तो बच तो गया। अब उसमें माँ इतना डिप्रेशन में चले, मेरे 2 ही बेटे थे मेरे साथ, क्या हो गया, एक चला गया जवान बेटा और दूसरा जवान बेटा ऐसा हो गया, अब मैं सारा दिन इनकी सेवा करती हूँ, न मैं इधर की रही न उधर की रही, क्या मेरे पर दुख का पहाड़ आ गया। लेकिन बाप उसका इतना शक्तिशाली था, ज्ञानी था, बाबा का बच्चा था, कहता ये कोई हिसाब किताब कर्मों का था, आया है सामने, हम झेलेंगे पार करेंगे। उसको सहन किया, उसको समाया, अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं दिया। बाप की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन माँ तो माँ होती है, उससे सहन नहीं हो रही थी वो सीन, बहुत बहुत परेशान। ऐसा बाबा कहता कलयुग का अंत चला है, और अंत में हर एक आत्मा को अपने अपने हिसाब चुकतू करने हैं। अगर आपकी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, अगर आपने आत्मा को सही रूप से नहीं पहचाना है, तो ऐसी परिस्थितियों को पार करना बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं बच्चे इस आध्यात्मिकता को समझो, एक बहुत बड़ी आपके पास शक्ति है, कुछ भी शरीर को, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मैं आया हूं, अगर मैंने कुछ किसी को के साथ कुछ किया है पिछले जन्मों में तो हिसाब किताब आएगा, अगर मैंने बाबा की याद में उनकी शक्ति से उस हिसाब को चुकतू किया तो वो सूली जितनी बात भी कांटा होकर के खत्म हो जाएगी, मन के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं तो कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, कितनी अशांति हो गई इस संसार में। भले हमारे सरकारों ने मदद की, इतनी बड़ी कुछ भी किया, लेकिन अभी भी हम लोग सेफ हुए भारतवासी। आज मेरे पास हांगकांग से फोन आया, आज मैं सुबह की बात सुनाता हूँ। बहन कहती, हमने कहा तुम लोग 3 साल हो गए आए नहीं हो, आ जाओ चक्कर लगा के जाओ। कहती भाई जी भारत तो बहुत अच्छा है, मुक्त हो गया। हम अगर वापस आएंगे तो ये मेरे क्वारंटाइन में डालेंगे, यहाँ पर इतना सख्त क्वारंटाइन है कि हमको अपने घर में भी नहीं कहते, होटल में ही रहना पड़ेगा। और खांसी जुकाम भी है तो पॉजिटिव दिखाता है, और अगर पॉजिटिव आ गया तो पता नहीं कहाँ किस कोने में डाल देंगे, ना खाना देंगे, ना हम लोगों के सारे नियम टूट जाएंगे, इसलिए हम नहीं आ सकते। और मास्क के बिना तो हम निकल ही नहीं सकते घर से, कितना यहाँ पर सख्त कानून लगे हुए हैं। और हमारा भारत तो कितना स्वतंत्र हो गया, फिर भी अच्छा है, मस्त है सभी, कुछ भी हुआ भूल भी गए कहीं तो। तो कहने का भाव मेरा है कि अभी तक भी हम सब आध्यात्मिकता को नहीं पहचान रहे हैं, और आध्यात्मिक शक्ति को अगर पहचान लिया तो हम सब पार्टधारी हैं। जो हमने खेल खेले हैं, पार्ट बजाए हैं, हिसाब किताब बनाए हैं, हमारे सामने वो आएगा, ज्ञानी हो या कोई न हो, कोई भी हो। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा समझदार परमात्म शक्ति के आधार से उसको बहुत सहज पार कर लेगी, और जो ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो हाय हाय करके अंदर अंदर परेशान होगी, दुखी होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे इसको पहचानो, इस शक्ति को जानो और मेरे साथ अपना संबंध जोड़ो। तो मैं 4 बातें कह रहा था, 1 स्वधर्म की स्मृति, स्वरूप की स्मृति, 3 स्वदेश की स्मृति। मैं परम धाम घर से आया हूं, यहां पार्ट बजाने के लिए आया हूं, ये मेरा घर नहीं है, ये खेल खेलने का स्थान है। और हरेक का अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलेगा। जैसे शरीर में एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, ऐसे आत्माओं का पार्ट भी किसी से भी अपेक्षा नहीं रखना परिवार में, कि जैसा मैं हूं ऐसा ये बन जाएगा। हर एक देखो, एक माँ बाप के 3 बच्चे 4 बच्चे हों, अगर वो चारों को अच्छी पढ़ाई अच्छी पालना दे करके सोचे, इन सबको मैं डॉक्टर बना दूं, सबको मैं बैरिस्टर बना दूं, सबको मैं इंजीनियर बना दूं, बनेगा? एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा, दूसरा इंजीनियरिंग की इंटरेस्ट होगा, तीसरा कहेगा मैं खेती बाड़ी में ठीक हूं, मेरा यही धंधा ठीक है। 4 हैं तो चारों के विचार अलग, चारों के संस्कार अलग, चारों का पार्ट अलग। एक माँ बाप अगर सोचे जैसा मैं चाहता हूं ऐसा ही करे, नहीं कर सकता है, उसके संस्कार अलग हैं, क्योंकि आत्मा पिछले जन्मों के संस्कार लेके आपके पास आई है। अब उस बात को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो जिधर वो जा रहा है आप उसको सहयोग दे करके कहेंगे अच्छा तुम इस तरह जाएगा, ठीक है मैं तुमको ये मदद करता हूं। अधिकार नहीं, कर्तव्य पालन है, फर्ज पालन करो, लेकिन अधिकार समझ करके अगर आप कुछ करोगे तो कभी भी शांति से, सुख से, परिवार में चैन से नहीं रह सकते। ये बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर फिलॉसफी सिखाई, इसलिए हम सबके पार्ट को देख रहे हैं, लेकिन किसी के पार्ट को देख करके क्वेश्चंस में मन को उलझाते नहीं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अपने हिसाब किताब है, उसके अपने पिछले कर्म हैं, उनके अनुसार उसके संस्कार बने हैं, संस्कारों के अनुसार उससे फिर कर्म हो रहे हैं। अगर कोई आत्मा ने अपने पिछले संस्कारों को परमात्म याद की अग्नि से परिवर्तन नहीं किया है, तो वह संस्कार कुछ न कुछ गलत काम कराएंगे। तो हम सब इस स्मृति में रहे, हम आए कहां से हैं और जाना कहां से। जिस घर से हम आए हैं वहां पर बहुत प्योर संस्कार है, आत्मा बिल्कुल परम पवित्र है, स्वच्छ है, परम धाम घर में रहती है, बाबा के बिल्कुल साथ रहती है। इसलिए भक्ति में भक्तों ने मुक्ति को बहुत माना है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जीवन नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अनादि सृष्टि है, आपको जीवन तो लेना पड़ेगा, चाहे 1-2 जन्म ही आना पड़ेगा। लेकिन भक्तों ने इस बात को कहा नहीं नहीं, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मैं तो ऊपर ही रहूं, परम धाम में ही रहूं, मैं तो सागर में जाके बुदबुदा समा जाऊं। बाबा कहते बच्चे समाता कोई भी नहीं है, ये सृष्टि अनादि अविनाशी है, आत्मा अनादि अविनाशी है, आत्माओं का वो घर है, वहां वो मुक्त रहती है विकारों से, बुराइयों से, संबंधों से, मुक्ति स्थिति है, मुक्ति धाम है वो मोक्ष माना वो समाने का स्थान नहीं है। तो घर की पहचान जो यथार्थ अगर हम समझ जाएं, तो हमें पता चलेगा कि उस घर से, इस नाटकशाला में हम आए हैं, पाठ बजाने के लिए आए हैं, अब वापस घर चलने का समय है, अब बाबा हम सबको लेने के लिए आया है, कलयुग का अंतिम समय है, इसलिए अंतिम समय में जिस तरह से मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र स्वच्छ निर्मल ऊपर से आई थी, ऐसे मुझे फिर से बनना है। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में नियम मर्यादाएं धारणाएं सिखाई जा रही हैं, ये आत्मा को संपूर्ण स्वच्छ पावन बनाने के लिए है। क्यों इतनी परहेज? कहते ब्रह्मा कुमारी में गए, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसा करना, ऐसा करना, बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। ये कोई बंधन नहीं है, ये हमारे आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए है। जितना जो पालन करेगा बनेगा, और नहीं करेगा घर तो वापस सबको जाना ही है। वो परमात्मा कहता मैं तो लेने के लिए आया हूं, और मैं सबको ले जाऊंगा, सबके हिसाब किताब चुक तो करा के ले जाऊंगा। चाहे बहुत प्यार से चलो, योग करके पावन बन के चलो, नहीं तो फिर धर्मराजपुरी है मेरे पीस, मैं सबको उसके बीच में ले जाके अपने हिसाब किताब चुक तो करो, फिर आ जाओ मेरे घर में। तो अब वो घर चलने का समय है, और परमात्मा हमारे पिता जो हैं आत्माओं के, वो हम सबको इस समय गाइड कर रहे हैं। ये संगम का इतना श्रेष्ठ सुहावना समय है, इस समय को पहचानो, स्वयं को पहचानो, और साथ साथ जो उन्होंने नियम बताए हैं, संयम बताए हैं, उनका यथार्थ रीति से पालन करो, तब कहेंगे आध्यात्मिक जीवन इसकी बनी है। अगर हम सिर्फ कहते हाँ हैं तो बड़े अच्छे नियम, लेकिन हम कहते हमारे पास शक्ति नहीं है, माना भगवान की आज्ञाओं पर हम चलना नहीं चाहते, और नहीं चलेंगे तो आज्ञाकारी सपूत कहलाते हैं, और जो आज्ञा नहीं पानते हो तो आप सब जानते हो। इसलिए हम सब बाबा की आज्ञाकारी बच्चे बने। चार बातें और देता हूं मैं, समझ गए? चार बातें तो समझ में आई ना? पहली चार बातें, स्वरूप की स्मृति, स्वधर्म की स्मृति, स्वदेश घर की स्मृति, और स्वपिता की स्मृति परमात्मा की। ये आध्यात्मिक जीवन शैली में चारों बातों को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन चार निजी धारणाएं अगर आपकी हैं, तो आप घर गृहस्थ में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने घर को एक सुंदर आश्रम बना सकते हो। आश्रम किसको कहते हैं? जहां व्यक्ति को आश्रय मिले, आराम मिले। आज घर में जाता है बेचारा, ऑफिस से आया, दुकान से आया, बिजनेस से आया, वहां तनावपूर्ण वातावरण में आया, और घर में आते ही अगर ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं लाए, ये नहीं किया, ये नहीं किया, टक्कर शुरू हो जाए, तो आश्रय या क्या हो गया वो? ध्यान देना, बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं, हे मेरे बच्चे, अपने घर को सुंदर आश्रम बना दो। किसी आश्रम में आपको भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन आश्रम की चार विशेषताएं भगवान ने हमें बताई है। आप इस आश्रम में आए हो, देख रहे हो, सबसे बड़ी विशेषता है स्वच्छता। आज हमारे घर जो है उसके अंदर अगर स्वच्छता नहीं है, कहते हमारा घर छोटा है, क्या करें, हमारे पास इतना बड़ा स्थान नहीं है, लेकिन जितना है उसको व्यवस्थित रखना। मान लो कोई चीजें हैं आपने बिखेर कर रख दिया, जो आया जहां आया छोड़ दिया, तो गृहस्थी घर हो जाएगा, वो आश्रम नहीं कहलाएगा। अगर जो चीज जहां की है यूज किया और उसे सेट कर दिया, हम एक जगह सेंटर पर गए, हमने कहा यहाँ भोजन नहीं बनता है क्या? बोला बनाया है, देखो इतने लोगों ने खाया है, 25-30 लोगों ने खाया है, भोजन बना है। लेकिन भोजन बनने के बाद, भोजन करने के बाद तुरंत बर्तन साफ कर दिए, तुरंत सब सफाई करके जहां जो चीज थी रख दिया, छोटे स्थान को इतनी व्यवस्थित बनाया था जो लगता था ये सचमुच आश्रम है, कोई गंदगी नहीं, नहीं जहां देखो वहां पड़ा हुआ है। हम एक जगह विदेश में गए, एक भाई के घर में क्लास रखा था सेंटर पर, वो भाइयों का सेंटर था, बहनों का नहीं था। हमने कहा भाइयों के सेंटर तो भाइयों के जैसे होंगे, बहनों के अंदर तो सफाई की बहुत अच्छी विधि होती है। तो उस सेंटर पर गए, बेचारा वो थका हुआ भाई आया था, स्नान कर रहा था, मैं पहुंच गया एक भाई को लेकर के, आवाज दिया, भाई लोग आप आए हैं, अभी क्लास में आधा घंटा है, आप ऐसा करो चाय बना के पी लो। और बहनें होती तो ऐसा कभी नहीं कहेंगी, भाई जी बैठो मैं आती हूँ चाय बना के देती हूँ। उसने पहले तो मेरे को बोला चाय बना के पी लो। तब मैं जब भंडारे में घुसा तो देखा वो तो वास बेसन में इतने बर्तन पड़े हुए, बेचारे ने 2-3 दिन से मांजे नहीं हो गए, थका हुआ आया है, पड़े हुए बर्तन, मैं किस में बनाऊं, कहाँ बनाऊं, मैं ढूंढा ढूंढा, हमने कहा ठीक है, हमने पी लिया, चुपचाप जाके बैठ गया, कोई बर्तन ही साफ सुथरा नहीं था। हमने ये भाइयों के सेंटर है, हमने कहा भाई तुम थोड़ा तो इसको तुम व्यवस्थित करो। कहता क्या करूं भाई जी, सारा टाइम नौकरी करो, धंधा, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है उसमें मैं सब करता हूं, बाकी तो चलता है। स्वच्छता बहुत जरूरी है। कहते हैं जहां स्वच्छता है वहां प्रभुता है, वहां भगवान का वास है। हम घर को एक मंदिर बनाएं और पहले ये घर हमारा मंदिर रहे। ऐसे नहीं हम जो आया नहाया कपड़े वही पहन लिया लेटिन वाले, स्वच्छता नहीं है। और स्वच्छता नहीं है और आप भंडारे में भोजन बना रहे हो, भगवान का भोग लगाओगे क्या उसको? बहुत स्वच्छता चाहिए। इसलिए कितने अच्छे नियम बाबा ने बताए, बच्चे अगर स्नान लेटिन का ख्याल आता है, स्नान करने जाते हो, फुल कपड़े चेंज करो, कोई कपड़े दोबारा नहीं पहन सकते हो, धुलाई करो, साफ स्वच्छ रहो। स्वच्छता पहले तन की चाहिए और तन के साथ मन की स्वच्छता बहुत जरूरी है। मन में क्यों इधर उधर के विचार लाएं, ऐसे हैं वो ऐसे, ईर्ष्या के, द्वेष के, नफरत के, घृणा के, अगर वो विचार चले तो मन अशुद्ध है। मन मैला है तो प्रभु का वास इसमें कैसे हो सकता है? वो कहता है बच्चे मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं, दिल में कौन रहेगा? कहता आज एक VIP को बुलाना होता तुम इतनी सफाई करते हो, इतनी व्यवस्था करते हो और मुझे कहते हो भगवान आकर के मेरे दिल में बैठ जाए, जो परम पवित्र है, बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ है, उसको आप अपने स्थान पर बिठाना चाहते हो, उसके लिए कितना स्वच्छ मन चाहिए, कितने पवित्र शुद्ध विचार चाहिए। तो सबसे पहले तन की, मन की, फिर जिस स्थान पर रहते हैं उस निवास की, और फिर जो हम अध्ययन करते हैं उसकी, जो हम भोजन करते हैं उसकी, ये सब स्वच्छता बहुत जरूरी है। और जितनी स्वच्छता आपने अपना लिया है उतना ही आपको बहुत अच्छा शांति का, सुकून का बहुत अच्छा अनुभव होगा। जिस स्थान पर जाओ स्वच्छता है तो बढ़िया लगता है। हमारी दादी जी कहती थी देखो आप लोग लेक्चर करके ले आते हो, अगर भंडारे में आप आए टेबल गंदा है तो कोई क्या कहे, ज्ञान वहीं का वहीं रह जाएगा, कहेंगे बड़ा गंदगी है, खाने का दिल नहीं करता यहाँ। पहले टेबल साफ करने वाले की बहुत बड़ी विशेषता, इसको साफ करो। इसलिए स्वच्छता घर की अगर है, मन की है, तन की है, वस्त्रों की है, तो स्वच्छता सबको आकर्षित करती है और बहुत सहज योगी में बनने में मदद करती है। तो आध्यात्मिक जीवन शैली के अंदर स्वच्छता को अपनाना बहुत जरूरी है। और स्वच्छता के साथ साथ जितना आप अपने परिवार के अंदर एक रूहानी वातावरण, दैहिक आकर्षण वाला वातावरण तो हर घर में है, लेकिन आध्यात्मिकता जहां आ गई वहां बहुत रूहानियत का वातावरण, ये सब आत्माएं हैं पाठ बजा रही हैं। घर में कोई ऐसे टू मच हंसी मजाक, तेरे मेरे की बातें, पर चिंतन, पर दर्शन, सरकार की, इधर की, उधर की, किचड़े पट्टी, कितनी बातें चलती हैं, वो रूहानियत नहीं है। अगर आध्यात्मिक जीवन शैली अपनानी है तो अपने घर में अंतर्मुक्ता के साथ रमणीक जरूर रहो, हंसो बहलो, बात करो, लेकिन ज्यादा व्यर्थ की चर्चा नहीं होनी चाहिए, पर चर्चा हमें नहीं करनी है। अगर आध्यात्मिक वातावरण अगर घर में बना के रखो तो रूहानियत, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, हम सब एक ही घर से आए हैं, अपना अपना पार्ट बजाने के लिए आए हैं, ये भावना पैदा हो जाए। और तीसरा जो आज बाबा ने कहा, बहुत सच्चा प्यार, आपस में इतना प्यार है, वो प्यार जो आज प्यार की परिभाषा हमारे देश में है वो विकारी हो गया, काम विकार को ही प्यार समझ रहे हैं लोग। और बाबा ने हम बच्चों को कहा सच्चा प्यार, रूहानी प्यार, प्रेम का एक अच्छा सा परिवार बन जाए, प्रेम की मूर्ति बन जाओ, एक दूसरे के साथ हैं, मदद कर रहे हैं, सहयोगी हैं, स्नेही हैं, आकर्षण वाला प्यार, स्वार्थ वाला प्यार नहीं। तो आज प्यार है, आज जब तक किसी के पास पैसा है तब तक मित्र है, और पैसा खत्म हो गया तो देखता भी नहीं, बात भी नहीं करता, वो भिखारी प्यार, वो स्वार्थ वाला प्यार, दैहिक आकर्षण वाला प्यार वास्तव में वही जिस्मानियत है। इसलिए बाबा ने हमें कहा सच्चा प्यार करना सीखो, रूहानी प्यार, रूहानियत का वातावरण, और स्वच्छता, और चौथा है गुण ग्राहकता, हर एक के गुणों पर ध्यान जाए। सर्व गुणों की खान तो हमारा बाबा है, शिव बाबा है, उसके गुणों को हम अपने जीवन में धारण करके गुणों की मूर्ति बने और हर एक आत्मा के गुण ही देखें, अवगुणों पर ध्यान न जाए। अगर ये चार बातें आपके ध्यान पर रहेंगी तो घर एक मंदिर बन जाएगा, और मंदिर जहां है वहां तीन चीजें नहीं होती, तीन भूत आज बहुत ज्यादा प्रवेश हो रहे हैं। आप पहले भूत को तो निकाल देना, वो कौन सा भूत है? भूतकाल की बातों का चिंतन करना, भूतकाल समझ रहे हैं ना, पास्ट की बातें, बीत गई, जो कल तक घटना घट गई अब उसको सोच सोच करके लोग परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, पता नहीं ये हो गया ये हो गया ये हो गया। बाबा कहता भूत को सोचोगे तो भयभीत भी रहोगे और दुखी हुए रहोगे, इसलिए जो बीत गए उसको बिंदी लगा दो, लिपट गई अभी वो बात बीत गई, मुझे वो बीती का चिंतन नहीं करना। बीता इतिहास हो जाता है, आने वाला भविष्य जो है वो रहस्य है, हमें वर्तमान में जीना बाबा ने सिखाया, ये प्रेजेंट है, गिफ्ट है। तो ध्यान देना कि जो बीत गई उसका मुझे चिंतन नहीं करना, वो भूतकाल है, भूत का चिंतन नहीं किया जाता, तो इस भूत को तो भगा दो। और दूसरे भूत जो अंदर छिप गए हैं जाकर के, काम विकार क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, कहीं ना कहीं वो प्रकट हो जाता है, कब निकल जाता है पता नहीं चलेगा, छिपा हुआ है, अंदर अंदर बैठा है। प्रतिज्ञा करो इन भूतों को मुझे भगाना है, और उसके लिए भूतनाथ शिव बाबा बैठा है, उसकी याद में रहना है। अगर उस भूतनाथ शिव बाबा को रोज याद करोगे ना तो ये भूत भाग जाएंगे, और मंदिर है अगर तो मंदिर में भूत नहीं रहते। अगर ये आत्मा का मंदिर है शरीर, तो इस मंदिर के अंदर कोई भूत निवास नहीं कर सकता, क्यों गुस्सा आएगा। हम लोग 50 साल से यहां सेवाएं कर रहे हैं, कभी क्रोध में एक अपशब्द भी मुख से किसी के लिए नहीं निकाला होगा, कभी भी नहीं। और क्यों नहीं, नीचे ऊपर होगा, इतना बड़ा संगठन है, सेवाएं हैं, कारोबार है, बहुत सारी जवाबदारियां हैं, सब कुछ करते हुए इन आत्माओं का पार्ट है, बहुत अच्छे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है, जो करना है सब अपने अपने करो, मस्त रहो, बाबा की याद में रहो। किसी पर अधिकार रखोगे तो गुस्सा आएगा, गुस्सा तो सबसे बड़ा भूत है, इसलिए इन विकारों रूपी भूतों को अंदर स्थान नहीं देना है। ये हमारा मंदिर बाबा का है, इस मंदिर के अंदर मुझे बाबा को बिठाना है, आत्मा मंदिर है, आत्मा का ही चैतन्य मंदिर है, इस मंदिर के अंदर केवल खुशबू होनी चाहिए दिव्य गुणों की, कोई भी बदबू न हो, कोई भी आसुरी शक्तियां इसमें प्रवेश न करे। ये दूसरे भूत को भगा देना, आपकी आध्यात्मिक जीवन शैली है ये। और तीसरा भूत तो आप देख रहे हो, जो भटकती हुई आत्माएं जिनको स्थान नहीं मिलता, जन्म नहीं मिलता, अगर आपकी इच्छाएं और उसकी इच्छाएं मिक्स हो गई तो कहीं भी वार कर सकता है, इसलिए बाबा कहता है इच्छाओं को बाबा के आगे समर्पित कर दो, इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। जो इच्छाएं हैं बाबा आपने बहुत कुछ दिया है, अपने को तृप्त करो, भरपूर करो, संतुष्ट रहो। कोई भी असंतुष्ट आत्माएं, क्योंकि जितनी भटक रही हैं दुख देने वाली आत्माएं, वो असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, और जहां उनकी तृप्ति होती वहीं वो पहुंच जाती। इसलिए बाबा कहता बच्चे अभी समय है, आध्यात्मिक शक्तियों को पहचानो और इन सब भूतों से अपने आप को छुड़ा लो, मुक्त करो। तो ये जीवन अगर आप अपना लेंगे तो मैं समझता हूं आपका रहन सहन, खान पान, बोल चाल, व्यवहार सब परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए केवल तीन बातों पर ध्यान देना, तीन बातें बता दो। एक, अपने चिंतन का परिवर्तन करो, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, और जितना बाबा ने हमें सिखाया है, जो सिखा रहा है वही सोचना है, अधिक नहीं सोचना। चिंतन की धारा को चेंज करो, चिंतन से आपका चरित्र निर्माण होगा। चरित्र अच्छा है कहते बड़ा चरित्रवान व्यक्ति, इसका बोलना, इसका देखना, इसका व्यवहार कितना अच्छा है। चरित्र एक बहुत बड़ी संपत्ति है, और बाबा ने अपने बच्चों को चरित्र की संपत्ति दी है। जिसके पास चरित्र अच्छा है उसके पास पैसे की कमी नहीं रहती, अपने आप आता है। पैसे के पीछे कोई कहे भ्रष्टाचारी है, एक झूठ बोल करके, पाप करके, रिश्वत लेके कमा रहा है, ये बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए बाबा ने हमें चरित्रवान बनाया, चिंतन चेंज किया, चरित्र चेंज किया, और साथ साथ व्यवहार चेक किया। व्यवहारिक जीवन है, हम व्यवहार छोड़ करके, घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, समाज को छोड़ के नहीं बैठे हैं, हम सब व्यवहार में रहते हैं। लेकिन व्यवहार में रहते हुए हर एक आत्मा की विशेषताओं को समझना, उनको जान करके उनके साथ व्यवहार करना, मिलनसार होकर के रहना। बाबा ने आध्यात्मिक जीवन के अंदर चिंतन, चरित्र और व्यवहार का परिवर्तन, यही हमारा सच्चा परिवर्तन है। मैं समझता हूं आप सब इस भूमि से ऐसे संकल्प करके जाएंगे कि हम इस आध्यात्मिक जीवन शैली को अपना करके अमृत वेले से रात तक जो बाबा ने दिनचर्या बनाई है, कोई हट की दिनचर्या नहीं है, बहुत नॉर्मल दिनचर्या है, खुशनुमा दिनचर्या है, न शरीर बीमार पड़ेगा न मन बीमार पड़ेगा। अगर कोई ने 4 बजे उठना शुरू कर दिया, 4 से 8 बजे तक का 4 घंटे का समय किसी ने अपने लिए दिया, दो घंटा शरीर को दे दो, दो घंटा आत्मा को दे दो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज है, व्यायाम है, स्नान पानी है, दो घंटा दे दो, और दो घंटा आत्मा उन्नति के लिए मुझे योग करना है, भगवान के महावाक्य सुनने। चार घंटा अगर किसी व्यक्ति ने अपने लिए स्वयं के लिए निकाल लिया तो उसके 24 घंटे आध्यात्मिक जीवन शैली के बन जाएंगे। तो मैं आपसे यही चाहता हूं, यही हमारी आस है कि आप सब आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाएं और अपनी श्रेष्ठ जीवन की छाप डाले लोगों पर। ये ज्ञान सुनने का नहीं, सुनाने का नहीं है, ये अपने जीवन से दिखाने का है। बाबा ने कभी कहा नहीं ये करो, लेकिन करके दिखाया है। तो हम सब अपने जीवन में उतारें, सिर्फ सुने नहीं। ठीक है, ओके, ओम शांति। अभी हम सभी 20 मिनट के लिए 7:30 तक विशेष योग अभ्यास करेंगे। अगर उठक बैठक नहीं होगी तो आपको आनंद आएगा।
मिट जाएगा अपने चिंतन की धारा बदल दो। अपनी रूहानी ताकत के बल से, अपनी रूहानी ताकत के बल से, शिव पिता ही है अपना सहारा, उनकी यादों में सुख पाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा, कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो।
सभी अपने मस्तक के बीच इस भ्रकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, एक ज्योति पुंज, चैतन्य शक्ति, आत्मा हूं। मस्तक मणि हूं। मन बुद्धि और संस्कार की मालिक मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मुझ आत्मा की सर्वश्रेष्ठ शक्ति संकल्प शक्ति है। मैं अपने संकल्प के विमान से इस मन के उड़न खटोले से अपने घर की यात्रा पर शांति धाम, परम धाम, उस निर्वाण धाम का अनुभव करने, अपने सत्य पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए इस साकार जगत से सब नाते तोड़ अपने शुद्ध संकल्प द्वारा इस नील गगन से पार, सूर्य चांद सितारों की दुनिया से पार, उस गोल्डन लाइट लाल प्रकाश के बीच ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल समीप एक चमकते हुए स्टार के रूप में परम धाम घर की शक्तियों का अनुभव कर रही हूं। कितनी असीम शांति है, ये अखंड ज्योति महतत्व मुझ आत्मा का अपना निजी घर है। सभी उस घर में प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्बिंदु आत्मा स्वरूप में स्थित होकर परमात्म शक्तियों का अनुभव करो, उनकी शक्तिशाली किरणें शांति पवित्रता शक्ति की किरणें मुझ आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिवान बना रही है। मैं आत्मा सर्वशक्तियों से संपन्न बनती जा रही हूं। परमात्म प्यार का अनुभव उस प्यार में समाने का अनुभव यही लवलीन स्थिति है। शांति के सागर में समा जाओ, संकल्पों की हलचल भी समाप्त, अपने ज्योति स्वरूप को देखो, ज्योति के सागर के तले में चले जाओ। कुछ समय के लिए अव्यक्त लोक में, फरिश्तों की दुनिया में मैं लाइट के शरीर में विद्यमान, एक लाइट का फरिश्ता हूं। मैं फरिश्ते स्वरूप से विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा के निमित्त हूं। सब आत्माएं फरिश्तों को पुकार रही हैं, मदद मांग रही हैं। मैं डबल लाइट फरिश्ता, संसार के सब रिश्तों से मुक्त, प्रकाश की काया में विद्यमान, बाबा की प्रकाश से प्रकाशित, पूरे विश्व को सामने इमर्ज करके सर्वात्माओं को सर्च लाइट दो। शांति और शक्ति की किरणें फैलाओ। सब सुखी हों, सबका भला हो, सब दुखों से मुक्त हो जाएं। इस शुभ भावना के संकल्प पूरे वायुमंडल में फैलते हुए अनुभव करो। उस अव्यक्त लोक से, फरिश्तों की दुनिया से मैं आत्मा इस साकार लोक में, इस साकारी शरीर में विश्व कल्याण की सेवा के लिए अवतरित हुई हूं। ये भ्रकुटी मेरा आसन है, ये पांच तत्वों का शरीर मेरा माध्यम है, मुझे इस परमात्मा ने इस सृष्टि के कल्याण के लिए इस शरीर में भेजा है। मैं महान आत्मा हूं, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, जो उस भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी है, उसके विश्व परिवर्तन के कार्य में मैं मददगार, उनकी राइट हैंड भुजा हूं, मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने में भगवान की राइट हैंड हूं। ये जीवन उनके ही कार्य के लिए है, मैं इस महान कार्य के लिए ही इस शरीर में अवतरित हुआ हूं। मैं चैतन्य शक्ति महान आत्मा हूं, महान कर्तव्य के लिए भगवान ने मुझे भेजा है,
तो सभी को अच्छा मार्गदर्शन मिला जीवन शैली को आध्यात्मिक बनाने का। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।